विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज हमारी चर्चा का विषय है सऊदी अरब की नीतियां, जिन्हें आत्मघाती स्ट्रेटेजी भी कहा जा रहा है। सऊदी अरब मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। इस देश में मुसलमानों के अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान स्थित हैं। इसी देश में मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर हैं, जहां हमेशा आध्यात्मिक वातावरण छाया रहता है, और इन शहरों में विश्व भर से पहुंचने वाले मुसलमान विशेष शांति का आभास करते हैं। वातावरण में गूंजती अजान की आवाज़ और कुरान की तलावत से बड़ा विचित्र माहौल उत्पन्न हो जाता है।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم।
इस देश में आले सऊद वंश का शासन है, जो लगभग 100 साल से जारी है। सऊदी अरब से दुनिया भर के मुसलमानों का भावनात्मक लगाव है, क्योंकि यहीं पर मक्का और मदीना है। लेकिन इस देश की सरकार पर देश के भीतर भी और बाहर से भी आपत्ति की आवाज़ इसलिए उठती रही है कि उसकी नीतियां सऊदी अरब ही नहीं, इस्लामी जगत के लिए भी विध्वंसकारी नज़र आने लगी हैं। सऊदी अरब ने हमेशा से ये कोशिश की है कि इस्लामी जगत के मुखिया की भूमिका में रहे, लेकिन उसे अन्य देशों से हमेशा चुनौती मिलती रही, क्योंकि अन्य इस्लामी देश सऊदी अरब की सरकार को ये भूमिका देने के लिए तैयार नहीं हुए। सऊदी अरब को मिस्र, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों से हमेशा चुनौती मिली। सऊदी अरब ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का सहारा लिया। अमेरिका ने सऊदी अरब का काफ़ी साथ दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के कई महत्वपूर्ण समझौते हैं, जिनमें एक समझौता पेट्रोडॉलर से संबंधित है। इस समझौते के आधार पर सऊदी अरब कई दशकों पहले तेल की कीमत सोने के बजाय अमरीकी मुद्रा अर्थात डॉलर में लेने पर तैयार हो गया था, और इसके बदले में अमरीका ने सऊदी अरब को हथियार तथा सुरक्षा देने का वचन दिया था। यहीं से पेट्रोडॉलर की कहानी शुरू हुई। सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों की मदद से अपनी ताकत तो बढ़ा ली, लेकिन उसकी ये स्ट्रेटेजी इस्लामी जगत को पसंद नहीं आई। सऊदी सरकार अमरीका के समर्थन के कारण अमेरिका की शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगी, और उसे ये आभास हो गया कि अमेरिका उसके लिए थानेदार का रोल अदा करता रहेगा। यही सऊदी सरकार की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब के लिए पुलिसमैन का रोल अदा करने के बजाय सऊदी अरब को ही प्रयोग करने की नीति पर काम कर रहा था। अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार बनने के बाद तो सऊदी अरब को कई बार बड़े झटके लगे, और सबसे बड़ा झटका परमाणु मामले में ईरान से अमेरिका की वार्ता और फिर समझौते के रूप में लगा। सऊदी अरब को इससे पहले भी आभास होने लगा था कि अमेरिका उसके इशारे पर काम नहीं कर रहा है, अतः उसने क्षेत्रीय देशों में खुद को सबसे बड़ी शक्ति बनाने तथा पूरे क्षेत्र को अपनी मर्जी के अनुसार ढालने की ठान ली। सऊदी अरब ने ये समय आने से पहले भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बड़े प्रयास किए और अलग अलग तरीक़ों से अनेक देशों को दबाया, लेकिन इस देश में शाह सलमान के राजगद्दी संभालने और उनके पुत्र मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अधिक शक्ति मिल जाने के बाद सऊदी अरब की गतिविधियों में तेज़ी आ गई। सऊदी अरब इससे पहले तक अपनी योजनाओं के लिए अन्य देशों का सहारा लेता था और खुद पीछे रहने की कोशिश करता था, मगर सत्ता के स्तर पर हुए हालिया बदलाव के बाद अब सऊदी अरब आगे आगे दिखाई देता है। सऊदी अरब ने इसी क्रम में यमन पर हमला कर दिया। यह हमला ऐसी स्थिति में शुरू किया गया कि रियाद सरकार सीरिया युद्ध में बहुत बुरी तरह उलझी हुई थी तथा लीबिया में भी प्रभाव बढ़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। यमन पर हमला शुरू करने के बाद सऊदी अरब के अधिकारियों ने सीरिया तथा अन्य देशों के विरुद्ध इसी प्रकार का प्रत्यक्ष ऑपरेशन शुरू करने की धमकियां देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा तो पता चला कि सऊदी अरब यमन में बहुत बुरी तरह फंस गया है। यमन की सेना और स्वयंसेवी बलों ने जो जवाबी कार्यवाही की, उससे सऊदी अरब को भारी नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है। निश्चित रूप से सऊदी अरब ने यमन पर बमबारी करके इस अत्यंत गरीब देश को तबाह करके रख दिया, लेकिन खुद सऊदी अरब को भी भारी नुकसान हुआ है। यही हालत सीरिया में भी है। सऊदी अरब तथा कुछ अन्य देश ये समझ रहे थे कि सीरिया की सरकार कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगी और ये देश उनके अधिकार में चला जाएगा। आज 5 साल से अधिक समय बीत चुका है और हालत यह है कि सीरियाई सेना तथा स्वयंसेवी बलों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और वो आतंकी संगठन जिन्हें सऊदी अरब तथा कुछ अन्य देशों का समर्थन प्राप्त था, धीरे धीरे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सऊदी अरब इसी तरह इराक के मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। नतीजा ये निकला है कि आज क्षेत्र के देशों को सऊदी अरब से गहरी आपत्ति है और कुछ टीकाकार मानते हैं कि सऊदी अरब से गहरा मतभेद रखने वालों में तुर्की भी शामिल हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनलों ने तुर्की में होने वाले हालिया विफल सैनिक विद्रोह का एक प्रकार से समर्थन किया था, जिसके बाद से अर्दोगान सरकार ने सऊदी अरब से काफ़ी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के देश सऊदी अरब को विध्वंसकारी देश के रूप में देखने लगे हैं। सऊदी अरब की भीषण बमबारी झेल रहे यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हुसी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सऊदी अरब पर कदापि भरोसा नहीं किया जा सकता और ये कि यमन की जनता सऊदी अरब का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीरिया के अधिकारी सऊदी अरब की नीतियों से बहुत आहत हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने एक साक्षात्कार में सऊदी अरब पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सबसे शर्मनाक नीतियां और गतिविधियां सऊदी अरब की हैं।
يعني لا يحق للمملكة أو الدول المشابهة أن تتحدث في كل هذه النقاط. أولا في الشأن الداخلي فهذه الدول من أكثر الدول تخلفا من ناحية الإصلاح السياسي على مستوى العالم. على مستوى العالم قاطبة. هم أكثر دول تخلفا في هذا المجال وأكثر وأقل مواطنين لديهم حقوق هم مواطنو تلك الدول وخاصة السعودية في مقدمة هذه الدول.
इराक के अधिकारी भी अपने बयानों में बार बार कह रहे हैं कि आतंकियों के विरुद्ध जारी लड़ाई के दौरान सऊदी अरब बहुत नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अरब मीडिया में बड़ा जाना पहचाना नाम है फिलिस्तीनी मूल के अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल बारी अतवान का। सऊदी अरब में कई साल गुजार चुके अब्दुल बारी अतवान इस समय लंदन में रायुल योम नाम का समाचार पत्र निकालते हैं। अतवान सऊदी अरब की नीतियों से हैरान है। अतवान का कहना है कि वहाबिज्म का स्रोत सऊदी अरब है और इसी विचारधारा को दाइश ने अपनाया है और वही सब कुछ कर रहा है जो इससे पहले वहाबी कर चुके हैं। अतवान कहते हैं कि सऊदी अरब ने सीरिया के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत बदला लेने के लिए भारी षड्यंत्र रचा और हथियार तथा लड़ाके इस देश में भेजे।
You know, Saudi Arabia is the origin of radicalism, Islamic radicalism in the Middle East and the whole world and the whole Islamic world. Why? Because Islamic State ideology is the same Wahhabi ideology which adopted by the Saudi kingdom. This is, you know, they go back to the time of Muhammad bin Abdul Wahhab in 1704. You know, so they are doing exactly the same. They are doing in Syria and Iraq. This brutality, this savagery, the Wahhabism with the Saudi regime in 1705 and 06, when they actually invaded Karbala and Najaf, they committed the same massacres. So Saudi Arabia actually now, you know, they are actually with Qatar and with Turkey, they have some sort of alliance. And they started the problem in Syria. They poured billions in Syria, hoping to topple the Assad regime for personal revenge, not for political means, not for actually, you know, a strategic move from their side. They just want to take revenge, personal revenge, because Assad insulted them in a way or another.
Saudi Arab ki इन घातक नीतियों के चलते अब देश के भीतर भी बहुत बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई जरूरी चीजों से सब्सिडी हटाई गई है, कुछ नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। इस बीच बहुत सी कंपनियां बंद हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर 40,000 से अधिक लोग अचानक बेरोजगार हो गए, जिनमें भारतीय नागरिकों की भी एक बड़ी संख्या है। भारतीय कामगारों का कहना है कि कई कई महीनों से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली, कंपनियां बंद हो गई हैं और उनके पास खाने और इलाज के पैसे नहीं हैं।
हम लोग को जाना, हम लोग को इंडिया जाना, हम लोग को تین تین مہینہ سے سیلری نہیں دیا، ہمارے یہاں آنکھ میں چوٹ لگ گیا، سلا آنکھ ہمارا لگ رہا ہے کہ بے کامیاب ہو جائے گا، سلا ہمارا دوا نہیں لا دیا، یہاں سب پریشان ہے، ہمارا کوئی نہیں سننے والا ہے۔
باقی مسجد مقبرہ ماحول بتاتا رہتا ہے۔
بڑی دردشا میں پڑے بھارتی ناگرکوں نے ودیش منتری سشما سوراج سے مدد مانگی، اور سشما سوراج نے اس کا سنگیان لیتے ہوئے بھارتی دوتاواس اور کاؤنسلیٹ کو نردیش جاری کیے تتھا بھارتی ادھیکاریوں کو بھی سعودی عرب بھیجا گیا۔ ٹیکاکار شکیل شمسی کا کہنا ہے کہ کئی لڑائیوں میں شامل ہونے اور وہابیت کے پرچار پر آنے والے خرچے تتھا تیل کی آمدنی میں کمی سے سعودی عرب کی ارتھ ویوستھا چرمرا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس دیش کے لیبر قانون میں بھی بہت بڑی کمیاں ہیں۔
ہاں یہ بھی ہے کہ بھارتی ان کی جو ارتھ ویوستھا ہے سعودی عرب کی وہ چرمرا رہی ہے جنگ کی وجہ سے، اور جنگ پر جو خرچہ کر رہا ہے جس طرح جس پرکار سے وہ یمن میں خرچہ کر رہا ہے اور یمن پر حملے کرنے کے لیے کر رہا ہے، جس پرکار سے وہ امریکی فوجیوں کو ریٹین کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے، جس پرکار سے وہ داعش کو پیسے پہنچا رہا ہے، جس پرکار سے وہ المترا کو پیسے، طالبان کو، ہر جماعت ان کو پیسہ پہنچانا ہوتا ہے، اور آمینہ مدرسوں اور ان کے لیے جو ان کے علماء ہیں ان کو فنڈنگ کرنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہاں پر خود پیٹرول بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ان کو اس طریقے کی پریشانیاں تو ہیں جس کے کارن یہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو کارن ہے وہ سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ وہاں پر غیر اسلامی لیبر لا کا ہونا، اگر وہاں پر اسلامی لیبر لا ہو جو یہ کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اگر وہ لیبر لا وہاں پر ہوتا تو اس طریقے کی پریشانی نہ ہوتی، وہاں سے غیر اسلامی لیبر لا جو بنائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ساری پریشانیاں اور جو یہ آج انسان بھگت رہے ہیں۔
بھارت ہی نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش تتھا کئی ایشیائی و افریقی دیشوں کے ناگرک جو روزگار کے لیے سعودی عرب گئے تھے بہت بری پرستھتیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ سب سعودی عرب جیسے دھنی دیش کی غلط نیتیوں کا پریڑام ہے۔ کیا یہ سب کچھ سعودی ادھیکاریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟